On the 125th birth anniversary of one of India's prominent authors, Ismat Chughtai, नाटक रेडियो में प्रस्तुत है आपकी सबसे लोकप्रिय एवं विवादास्पद कहानी लिहाफ। We would like to warn our listeners that the story does touch upon subjects of homosexuality and was in fact banned in 1942 upon its release. Chughtai, of course, was exonerated and went on to receive the Padma Shri. कहानी की वाचक हैं सारिका मल्होत्रा और अनीता दीक्षित ने इसे एडिट और मिक्स किया है। पेश है लिहाफ।
जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूं तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूं। न लिहाफ से किसी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर टकमगा रही हो। ये जब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों थी उस उम्र में, जबकि मेरी और बहनें आशक जमा कर रही थी। मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहां अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से भी लड़ भिड़ ना सकूंगी। सजा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि गो वो पकी उम्र के थे मगर नहायत नेक। कभी कोई रंडी या बाजारी औरत उनके यहाँ नजर ना आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक नहायत अजीबो गरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का जुनून होता है, बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहां तो बस तालिब इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वे खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके धोबी उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वे बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहां से शुरू होती है। वहां से जब वह पैदा होने की गलती कर चुकी थी या वहां से जब वह एक नवाब की बेगम बनकर आई और छपर खट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहां लड़कों का जोर बढ़ा, उनके लिए मुरग्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने की दरार में से उनकी लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी, या जब से वह मन्नतों मुरादों से हार गई, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा खुआनी भी चित्त हो गई। कहीं पत्थर में भी जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से ठस से मस ना हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वह इल्म की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन यहां भी उन्हें कुछ ना मिला। इश्किया नावल और जज्बाती अशार पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला था ऐसा कपड़ा लत्ता, कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत कि शबनमी कुर्तों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें, और ना वे उन्हें कहीं आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वे बेचारी कैद की कैद रहती। उन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सबके सब मजे से माल उड़ाने, उम्दा घी निकलने, जाड़ों का साजो सामान बनवाने आन मरते, और वे बावजूद नई रुई के लिहाफ के पड़ी सर्दी में अकड़ा करती थी। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा ना था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई जिंदगी? बेगम जान की जिंदगी जो थी, जीना बदा था नसीबों में, वह फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बों ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबो गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। माफ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रसालों में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वह 40-42 की होंगी। उफ़ो, किस शान से वह मसनत पर नीम दराज थी, और रब्बो उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक ऊदे रंग का दुशाला उनके पैरों पर पड़ा था, और वह महारानी की तरह शानदार मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बे इंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग ही बिगड़ी ना देखी, क्या मजाल जो एक बार इधर उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थीं और अबरू पर के ज्यादा बाल अलहदा कर देने से कमाने से खिंची होती थीं। आंखें जरा तनी हुई रहती थीं, भारी भारी फूले हुए पपोटे, मोटी मोटी पलकें। सबसे ज्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाज़िबे नज़र चीज थी, वे उनके होंठ थे। अमूमन वे सुर्खी से रंगे रहते थे, ऊपर के होंठ पर हल्की हल्की मूछें थी, और कनपट्टियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी, मालूम होता था किसी ने कस कर टांके लगा दिए हों। अमूमन वह अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए किसोलती तो वह चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था, और फिर गोश्त होने की वजह से वह बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफेद हाथ और सुडौल कमर, तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजाना भी जिंदगी की जरूरियात में से था, बल्कि शायद जरूरियात जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम ना था, बस वे सारे वक्त उनके छपरकट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सिर और कभी जिस्म के और दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल बोल उठता था, जब देखो रब्बो कुछ न कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूं, कोई इतना करे तो मेरा जिस्म तो सड़ गल के खत्म हो जाए। और फिर यह रोज रोज की मालिश काफी न थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती, और इतनी होती कि मेरा तो तखयुल से ही दिल लौट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर। عموماً صرف ربو ہی رہتی، باقی کی نوکرانیاں بڑبڑاتی دروازے پر سے ہی ضروریات کی چیزیں دیتی جاتی۔ بات یہ تھی کہ بیگم جان کو کھجلی کا مرض تھا۔ بیچاری کو ایسی کھجلی ہوتی تھی کہ ہزاروں تیل اور ابٹنے ملے جاتے مگر کھجلی تھی کہ قائم۔ ڈاکٹر حکیم کہتے، کچھ بھی نہیں، جسم صاف چھٹ پڑا ہے، ہاں کوئی جلد کے اندر بیماری ہو تو خیر۔ نہیں بھی، یہ ڈاکٹر تو موئے ہیں پاگل، کوئی آپ کے دشمنوں کا مرض ہے، اللہ رکھے خون میں گرمی ہے۔ ربو مسکرا کر کہتی، مہین مہین نظروں سے بیگم جان کو گھورتی۔ اوہ یہ ربو، جتنی یہ بیگم جان گوری تھی اتنی ہی یہ کالی، جتنی بیگم جان سفید تھی اتنی ہی یہ سرخ، بس جیسے تپایا ہوا لوہا، ہلکے ہلکے چیچک کے داغ، گٹھا ہوا ٹھوس جسم، فرتیلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، کسی ہوئی چھوٹی سی توند، بڑے بڑے پھولے ہوئے ہونٹ جو ہمیشہ نمی میں ڈوبے رہتے اور جسم میں سے عجیب گھبرانے والی بو کے شرارے نکلتے رہتے تھے، اور یہ ننھے ننھے پھولے ہوئے ہاتھ کس قدر فرتیلے تھے، کبھی کمر پر تو وہ لیجیے پھسل کر گئے کولہوں پر، وہاں سے رپٹے رانوں پر، اور پھر دوڑے ٹکنوں کی طرف۔ میں تو جب کبھی بیگم جان کے پاس بیٹھتی یہی دیکھتی کہ اب اس کے ہاتھ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ گرمی جاڑے بیگم جان حیدرآبادی جالی کاگے کے کرتے پہنتی، گہرے رنگ کے پاجامے اور سفید جھاگ سے کرتے، اور پنکھا بھی چلتا ہو پھر بھی وہ ہلکی پھلکی دلائی ضرور جسم پر ڈھکے رہتی تھی۔ انہیں جاڑا بہت پسند تھا، جاڑے میں مجھے ان کے یہاں اچھا معلوم ہوتا۔ وہ ہلتی ڈلتی بہت کم تھی، قالین پر لیٹی ہیں، پیٹھ کھج رہی ہے، خشک میوے چبا رہی ہیں، اور بس ربو سے دوسری ساری نوکرانیاں کھار کھاتی تھیں۔ چڑیل بیگم جان کے ساتھ کھاتی، ساتھ اٹھتی بیٹھتی، اور ماشاء اللہ ساتھ ہی سوتی تھی۔ ربو اور بیگم جان عام جلسوں اور مجموعوں کی دلچسپ گفتگو کا موضوع تھی، جہاں ان دونوں کا ذکر آیا اور کہہ کہے اٹھے۔ لوگ نہ جانے کیا کیا چٹکلے غریب پر اڑاتے، مگر وہ دنیا میں کسی سے ملتی ہی نہ تھی، وہاں تو بس وہ تھی اور ان کی کھجلی۔ میں نے کہا کہ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی اور بیگم جان پر فدا، وہ بھی مجھے بہت ہی پیار کرتی تھی۔ اتفاق سے اماں آگرے گئیں، انہیں معلوم تھا کہ اکیلے گھر میں بھائیوں سے مار کٹائی ہوگی، ماری ماری پھروں گی، اس لیے وہ ہفتہ بھر کے لیے بیگم جان کے پاس چھوڑ گئیں۔ میں بھی خوش اور بیگم جان بھی خوش، آخر کو اماں کی بھابھی بنی ہوئی تھی۔ سوال یہ اٹھا کہ میں سوؤں کہاں، قدرتی طور پر بیگم جان کے کمرے میں، لہٰذا میرے لیے بھی ان کے چھپر کٹ سے لگا کر چھوٹی سی پلنگڑی ڈال دی گئی۔ 10-11 بجے تک تو باتیں کرتے رہے، میں اور بیگم جان چانس کھیلتے رہے، اور پھر میں سونے کے لیے اپنے پلنگ پر چلی گئی، اور جب میں سوئی تو ربو ویسی ہی بیٹھی ان کی پیٹھ کھجا رہی تھی۔ بھنگن کہیں کی، میں نے سوچا۔ رات کو میری ایک دم سے آنکھ کھلی تو مجھے عجیب طرح کا ڈر لگنے لگا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا، اور اس اندھیرے میں بیگم جان کا لحاف ایسے ہل رہا تھا جیسے اس میں ہاتھی بند ہو۔ بیگم جان، میں نے ڈری ہوئی آواز نکالی، ہاتھی ہلنا بند ہو گیا، لحاف نیچے دب گیا، کیا ہے، سو جاؤ، بیگم جان نے کہیں سے آواز دی۔ ڈر لگ رہا ہے، میں نے چوہے کسی آواز سے کہا۔ سو جاؤ، ڈر کی بات کیا ہے، آیتل کرسی پڑھ لو۔ اچھا، میں نے جلدی جلدی آیتل کرسی پڑھی، مگر یالوم مابین پر ہر دفعہ آ کر اٹک گئی، حالانکہ مجھے اس وقت پوری آیت یاد ہے۔ تمہارے پاس آ جاؤں بیگم جان؟ نہیں بیٹی، سو رہو، ذرا سختی سے کہا۔ और फिर दो आदमियों के खुसुर-पुसुर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, ये दूसरा कौन? मैं और भी डरी।
बेगम जान, चोर वोर तो नहीं?
सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बो की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नजारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा की वहमी हूं। रात को डरना, उठ उठ कर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छबरकट पर ही तय हो रहा था और मेरी खाक समझ में न आया कि क्या फैसला हुआ। रब्बो हिचकियां लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह सपड़ सपड़ रकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। मैं तो घबराकर सो गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वह बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वह किसी तरह मानता ही नहीं था। नवाब साहब के यहां कुछ दिन रहा, खूब जोड़े बागे भी बने, पर न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी ना आता। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहां उससे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उनका जोर जोर टूटता रहा। किसी का छूना भी ना उन्हें ना भाता था। उन्होंने खाना भी ना खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूं? सच कहती हूं। मैंने ताश रख दिए। मैं थोड़ी देर तक खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था, मगर वह आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सिर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी उनकी पीठ, चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुशी होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, इधर जरा शाने से नीचे। हाँ हाँ, वाह भाई वाह। वाह, मैं सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगी। और इधर, हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वह मुझसे ही खुजवाती रही और मुझे उल्टा फख्र हो रहा था। यहाँ ओए, तुम तो गुदगुदी करती हो। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया?
नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूं आप?
बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई? हंसी। गुड़िया नहीं तो बनवा लेना कपड़े, पहनाना खुद। मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े, सुना? अच्छा, इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहां खुजली हो रही थी रख दिया। जहां उन्हें खुजली मालूम होती वहां मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन के तरह खुजाती रही और वह मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फ्राकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सी लाए। तुम्हारी अम्मा कपड़ा दे गई हैं?
वे लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसा है।
मैं बकवास कर रही थी और हाथ न जाने कहां से कहां पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी ना हुआ, बेगम जान तो चुप लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। होय लड़की, देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नूचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई
और मैं झेप गई।
इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सिर रख कर लेटा दिया।
आय है कितनी सूख रही है, पसलियां निकल रही हैं।
उन्होंने मेरी पसलियां गिनना शुरू की।
मैं भुनभुनाई, ओ तो क्या मैं खा जाऊंगी?
कैसा तंग स्वेटर बना है,
गरम बनियान भी नहीं पहना तुमने।
मैं कुलबुलाने लगी।
कितनी पसलियां होती हैं?
उन्होंने बात बदली।
एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10।
मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वह भी ऊटपटांग।
हटाओ तो हाथ। हाँ, 1, 2, 3।
मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा।
मैं मचल गई।
बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूं तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए, ऊपर के होंठ पर स्याही गिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे थे मगर नरम नरम, जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शाल उतार दी थी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गेरबान की तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा खूब हो रहा था। मुझे एक नामालूम डर से दहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें, मैं रोने लगी दिल में। वह मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे कोई भूतना सवार था और मेरे दिमाग का यह हाल कि ना चीखा जाए और ना रो सकूं। थोड़ी देर के बाद वह पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी है और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़ सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं रही थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रहती, मगर उनके कमरे में कदम रखते दम निकलता था। और कहती किससे, और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है? वह बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी।
आज रब्बों में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूं और मरूंगी निमोनिया से।
लड़की क्या सर मुंडवाएगी,
जो कुछ हो हवा गया और आफत आएगी।
उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। वह खुद मुंह हाथ सिलपची में धो रही थी, चाय तिपाई पर रखी थी।
चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना, वह तौलिया से मुंह खुश करके बोली।
मैं जरा कपड़े बदल लूं। वह कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही।
बेगम जान 9 से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़ मैं चाय पीती रही।
हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा, आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूं जो तुम मेरी मुसीबत।
अम्मा को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वह तो औरत जात को सात तालों में रखने की कायल, और यहां बेगम जान की वह दहशत कि दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती और वहां ना टिकती, मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदल सोला सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के अतर ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया, और वह चली मुझ पर लाड उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी।
मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो।
मगर मैं खली की तरह फैल गई, सारे खिलौने मिठाइयां एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ।
वहां भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया।
पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही।
कच्ची अम्मियां खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रबो ने राय दी।
और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वह थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी टुकड़े टुकड़े हो गया, महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वह मांग जो मैंने कभी बिगड़ी ना देखी थी झाड़ झंखाड़ हो गई। ओह 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 ओह, वह झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। अब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बू उनके कमर से लगी जिस्म दबा रही थी।
जूती उतार दो,
उसने उनकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लोट मचाई। मेरा रुआ रुआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने का लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथी फिर फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, यह बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया, और रब्बो मुई तो है सदा की चट्टू, जरूर यह तर माल उड़ा रही है। मैंने नथुने फुलाकर हवा को सूंघा, मगर सिवाय अतर संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के और कुछ न महसूस हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुत तेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं लरज गई। मालूम होता था गो गो करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है, और अब उछलकर मेरे ऊपर आया। अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई न हुई, और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोलकर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह,
मैं गड़ाप से अपने बिछौने में।